सालों पहले बाबा ने हम सभी से कहा था कि बच्चे अब समय अनुसार चेहरे और चलन द्वारा सेवा करो। वाणी से सेवा तो बहुत की, लेकिन अभी स्थिति सेवा करे, हमारी अवस्था सेवा करे। वो सेवा क्या होती है, उसका जीवंत दृष्टांत आदरणीय पुष्पा दीदी जी हैं। चेहरा सेवा करता है, रूहानियत सेवा करती है। तो ऐसी विशेष आत्मा आज हम सभी के बीच में है। हम सब एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। पिछले 45 साल से आपने अपना जीवन यज्ञ सेवा में समर्पित किया है। समय प्रति समय मधुबन शांतिवन ज्ञान सरोवर में आपकी वाणी का लाभ बीके और नॉन बीके भाई बहनों को मिलता रहता है। जो भी सम्मेलन होते हैं, शिविर होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो उनके द्वारा आपका लाभ अनेकों को प्राप्त होता रहता है। आप जुरिस्ट विंग के डायरेक्टर भी हैं। आज का आपका विषय है अनुभूति का आधार, अंतर्मुखी अवस्था। आदरणीय पुष्पा दीदी जी।
ओम शांति। सब बोलिए ओम शांति। आप सब बाबा की याद में मस्त थे, खूब प्रेम से याद कर रहे थे, तो आवाज से ऊपर चले गए ऐसे ना, इसलिए अब आवाज में आना थोड़ा सा लगता कैसे बोले। अच्छी बात है, यही अनुभव बच्ची में कर रहे हो और करना जरूरी भी है, और इसीलिए अंतर्मुखता चाहिए। वही टॉपिक रखा गया, क्योंकि हम सब की इंटरनल विश है कि जो बाबा चाहते हैं हम उसी स्थिति को, अवस्था को प्राप्त करें। और जब मैं आज सुबह आज के महावाक्य पढ़ रही थी, वो बार बार यही ख्याल आ रहा था कि प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को कैसे अपने संकल्प पर ध्यान देना है। हमारी संकल्प की क्वालिटी चाहिए, क्योंकि संकल्प ही सभी बातों का आधार है। जो हम वाणी से करने की कोशिश करते हैं या अन्य किसी साधन या अन्य किसी विधि द्वारा कोशिश करते हैं, बाबा ने आज कहा है वो आप अपने संकल्प द्वारा कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मुरली तो आज आप सबने सुनी ही होगी, तो अवश्य ही मंथन भी चला होगा कि हमारी संकल्प शक्ति ऐसी है। और बाबा ने कहा है तो अवश्य ही ऐसा होना ही चाहिए और हो भी सकता है। कभी कभी कोई कोई तो ऐसा सोच लेते हैं कि ये संभव कैसे होगा, कहाँ तक होगा, परंतु बाप दादा हम बच्चों को ही कहते हैं तो अवश्य बाप दादा हम बच्चों में ये निश्चय रखते हैं, तो हमें भी स्वयं में ये निश्चय रखकर चलना है कि हमारे ही संकल्प से हाँ ये सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये बात सुनाई कि अंतर्मुखता इस सब के लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि संकल्प शक्ति सूक्ष्म शक्ति है, बाह्य शक्ति नहीं है। ये जैसे वाणी की शक्ति, वाणी भी अपने आप में शक्ति है। हाँ आप बोलकर देखो कितना कुछ करते हैं। कई बार कईयों को कहते मौन रखो, कहते मेरे काम रुक जाएंगे। मैं ऑफिस में होता हूँ, बॉस बुलाएगा तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। तो वाणी देखो कितना प्रभाव हाँ माध्यम बनती है, कितनी ताकत दिखाती है ना। ऐसे अन्य बातें भी, पर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को संकल्प की ताकत भी सुनाई है। तो उसे हम कैसे इतना पावरफुल बनाएं, उसमें अंतर्मुखता का बड़ा जबरदस्त गुण सहयोग देता है। लेकिन अंतर्मुखता कैसे आए, क्योंकि उसके आधार से हम अनुभव कर सकते हैं सभी बातों को। माना क्योंकि सूक्ष्म बात है ये, संकल्प शक्ति सूक्ष्म है, बाबा की याद सूक्ष्म है, अशरीरीपन का अनुभव सूक्ष्म है, जो भी बाबा ने हमें स्थिति बताई है वो सब सूक्ष्म है, वो कोई बाह्य स्थूल नहीं है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें अंतर्मुखी होना बहुत आवश्यक है। ऐसे तो आप सब, मैं समझती हूं कि इसके अनुभवी हैं या नहीं, अंतर्मुखता के अनुभवी तो होंगे ही। सोच रहे हो थोड़ा सा, सोच रहे हो या नहीं, कुछ कह रहे हैं। भले जो भी है हो तो सही, लेकिन ये जरूर है कि आप उसकी परसेंटेज को और अच्छा बनाना चाहेंगे और उसे बहुत इजी और नेचुरल रूप में रहें, ताकि आपका कर्म भी चल सके, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए और आप अंतर्मुखी भी रह सके। ठीक है ना। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अंतर्मुखता वास्तव में सभी गुणों का राजा है। जैसे आम के लिए कहते हैं ना सभी फलों का राजा है, गुलाब के लिए कहते हैं ना सभी फूलों का राजा है, क्योंकि जो फूलों में होना चाहिए वो अकेले गुलाब में ही है। रूप भी है, रंग भी है, गंध भी है, रस भी है। किसी फूल में रूप होगा रस नहीं होगा, किसी में गंध होगी तो रूप नहीं होगा। ऐसे आम में कहते हैं सभी फलों का राजा है, तो उसका भी रूप रंग भी है और स्वाद भी है, बूढ़ा और बच्चा हर एक उसको खाना चाहता है ना। अंतर्मुखता भी एक ऐसा गुण है जिससे सहज हमारे अंदर और कई गुण आ जाते हैं, नेचुरल आ जाते हैं। ये आपको अनुभव करना है, और इसीलिए कोई भी स्थिति को बनाने के लिए पहले हमारी अंतर्मुखता चाहिए। अंतर्मुखता होगी तब आप अशरीरी भी हो सकते हैं सहज, फरिश्ता स्वरूप भी हो सकते हैं सहज, जो भी अवस्था बनाना चाहें, आवास से परे जाने की अवस्था बनाना चाहें, बाबा से रू रिहान करना चाहें, योग की कोई भी हम शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करना चाहें, तो पहले चाहिए अंतर्मुखता।
अब ऐसे तो आप समझते ही हैं कि अंतर्मुखता माना कि कम बोलो, ऐसे ना क्या समझते हैं? अंतर्मुखता माना, आप तो आज भी अंतर्मुखी होके बैठे हैं सब, अंदर की ओर जाना, ये कहा ना, अंदर की चेकिंग। अच्छा, बहुत अच्छा। अपने थॉट्स को चेक करना, अपने आप से बातें करना, अंदर की एकाग्रता, बहुत अच्छा। और भी कोई उत्तर है? हाँ बोलिए भाई। बाहर से वैराग्य, अच्छा, मना बाह्य मुक्ता ना हो, हाँ शक्ति जमा करें, अच्छा। और बाबा और मैं, और सुनाइए। वही तो अंग्रेजी में हो गया, वो हिंदी में हो गया, हाँ। और संकल्पों पर कंट्रोल, अच्छा। और पीछे से कोई सुनाओ, आगे वालों ने तो बहुत अच्छा सुनाया, कोई बोलेगा? और अच्छा, अच्छी बातें सुनाई, भावार्थ तो यही ही है, लेकिन हम कैसे अंतर्मुखी बने, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। तो अंतर्मुखता माना कि हमारी ये सारी कर्म इंद्रियां, सारी, सिर्फ मुंह नहीं, कई सिर्फ मुख को समझते हैं, हम बोलते हैं ना मुंह से, तो समझते हैं कम बोलना है, इसको अंतर्मुखी कहते हैं, ये राइट है बात, लेकिन कईयों की तो वैसे ही कम बोलने की नेचर होती है ना, तो अंतर्मुखी होते हैं वो। रॉयल लोग कम बोलते हैं, कई वीआईपी लोग भी कम बोलते हैं, तो वो अंतर्मुखी होते हैं नहीं? क्यों? थॉट्स तो चल रहे हैं, हाँ? तो अंतर्मुखी माना थॉट्स भी ना चले। अच्छा देखो, ये है ना हमारा चेहरा, ठीक है, इसमें आंखें भी हैं, कान भी है, मुख भी है, जीभ भी है ना, नाक भी है। तो हमारा ध्यान इन आंखों से, कानों से, मुख से, जिह्वा से बाहर की ओर जाता है, ठीक है, भले हम चुप हैं, लेकिन आंखों से अंतर आत्मा ने जो देखा उसे ग्रहण कर लिया, तो अंतर्मुखता नहीं हो सकती। इन इंद्रियों से आत्मा कार्य लेती है, देखने का काम करती है, सुनने का काम करती है, बोलने का काम करती है, चखने का काम करती है, सूंघने का काम करती है ना, स्वतः ही होता है, करना भी नहीं पड़ता। आप चल रहे हैं, राह चलते आंख तो आपकी खुली हुई है, आंख बंद करके तो नहीं चलेंगे, और उस समय मान लिया जाए आंख बंद कर ली तो ठोकर खा लेंगे, कार चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक सेकंड भी बंद नहीं कर सकते, हाँ। कई ऐसे केस होते हैं, झपकी ली और गाड़ी गई खड्डे में, हाँ, आंख तो खुली है ना, कान भी खुले हैं, सब आवाज चारों तरफ का कान में पड़ता ही रहता है। तो क्या होता है कि हमारी आत्मा ने इन आंखों से जो देखने का कार्य किया वो कितना किया, सोचिए। ये नियंत्रण है, देखना आवश्यक है, बाबा ने हमें इसलिए योगी ऐसा सिखाया, देखो कि वो भी आंख खोल कर बैठो, हाँ? हठ योगी क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, सांस भी चढ़ा लेते हैं, कई तो कानों में रुई भी डाल लेते हैं, मुख को भी बंद कर देते हैं, पट्टी भी बांध लेते हैं, हाँ? लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे भले देखो भी सही, सुनो भी सही, बोलो भी सही, हा? अभी भी तो आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ पता लग रहा है, हमने तो बोलने के लिए भी कहा आपको, लेकिन फिर भी इस समय आप अंतर्मुखी हैं, अंतर्मुखी हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें बाह्यता में नहीं है, कान इस समय बाह्यता में नहीं है। अगर बाहर का हॉर्न भी सुनाई देगा, भले आपको पता भी लगा, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान यहां कंसंट्रेट है, ऐसे नहीं पता नहीं लग रहा। आपको पता लगा लाल बत्ती से सफेद बत्ती हो गई, पर आपका ध्यान भंग नहीं हुआ, पता तो लगा ना, हमें भी पता लगा, लेकिन हमारा ध्यान बत्ती में नहीं गया, ना बत्ती जगाने वाले में गया, गया क्या? नहीं गया। कर्म इंद्रियों ने आंखों से देखा जरूर, कानों से सुना जरूर, तो अंतर्मुखता माना कि इन कर्म इंद्रियों के होते हुए जो मेरा ध्यान है, जो मेरा संकल्प है, वो बाहर की तरफ ना भागे, अंदर की तरफ आए। इसलिए उसके ऑपोजिट में कहते बाह्य मुखता, अंतर्मुखता हो, बाह्य मुखता ना हो। तो बाह्य मुखता माना ध्यान बाहर की तरफ जाना। कई देखो चुप करके बैठे रहते हैं, लेकिन सारा चिंतन उनका बाहर ही चलता रहता है। पास से कोई गुजर गया, दो व्यक्ति बातें करते हुए गुजर गए और एक सेंटेंस उनका कान में पड़ गया, बस जी बस वही चिंतन चलता रहेगा। अच्छा ये बात कर रहे थे, अच्छा ये कह रहे थे, तो इसको अंतर्मुखता नहीं कहेंगे। अंतर्मुखता माना ही देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, कोई भी कर्म करते हुए मुझ आत्मा का संकल्प ध्यान अंदर की ओर हो, बाहर की ओर नहीं। ये कितनी बड़ी कला है और ये कितनी बड़ी ताकत है, इसे आप छोटी बात नहीं समझिए। सन्यासी सन्यास करके भी इस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाए, इसलिए बेचारे आंख बंद कर लेते हैं, ना देखो ना दिमाग चले, ना बोलो ना सुनो और ना दिमाग चले, और आप भले देख रहे हैं जैसे देख ही नहीं रहे, भले सुन रहे हैं जैसे सुन ही नहीं रहे, जो सुनना है वो सुनना है, जो नहीं सुनना वो नहीं सुनना, भले बोल रहे हैं लेकिन जैसे बोला ही नहीं, 10 शब्द की जगह 1 शब्द। बाबा इसलिए आपको कौन सा टाइटल देते हैं, हंस का, हाँ मोती चुगता है, ठीक है ना, तो मोती चुगने वाला जल्दी अंतर्मुखी बन जाता है। इस पर बाबा एक कहानी भी सुनाते हैं कई बार, हाँ मुरलियों में आती है, सुना देती हूँ शॉर्ट में, तो नींद भी नहीं आएगी किसी को, ऐसे ना, वैसे तो आप सब जागृत बैठे हो, वाइब्रेशन भी आपका बहुत अच्छा पावरफुल है, योग में तल्लीन ऐसी अवस्था में ही बैठे हैं। तो एक बार क्या हुआ, सास और बहू थी, सुनी भी होगी कईयों ने, थोड़ा थोड़ा झगड़ा चलता था। भाई ये नहीं सोचना सास और बहू का ही झगड़ा होता है, झगड़ा तो भाइयों का भी होता है, ऐसी बात नहीं है, आपका नहीं होता दुनिया में और आपसे कोई करे भी तो आप तो विजयी आत्मा हो ना, सब अंतर्मुखी आत्मा हो, तो आप करोगे भी नहीं। ताली हमेशा क्या कहते हैं, दो हाथ से बजती है, एक से तो बजती नहीं है, हा? وہ کہاوت بھی ہے نا، ایک نے کہی دوسرے نے مانی، نانک کہے دونوں گیانی، ایک چپ سو سکھ. اگر ہم ایک چپ پہ انترمکھی ہیں، دوسرا بولتا رہے کیا ہوگا آخر، بول بول کر چپ ہو جائے گا. تو وہی اس ساس اور بہو کا بھی ہوا. بابا بھی انترمکھی ہونے کے لیے یہ مثال سناتے ہیں، ہاں ساکار میں بابا مرلی میں سب باتیں انوبھو کی سناتے ہیں نا. تو کیا ہوا کہ بہو تھوڑی بیچاری پریشان ہو گئی، تو اس نے سوچا، سمجھدار تھی، کہ ایسے جھگڑا ہونا اچھا نہیں ہے، اور میں ادھر ادھر گلی محلے میں کسی کو سناؤں اس کا بھی کیا فائدہ ہوگا. تو وہ سیدھا اپنے گرو کے پاس گئی، گرو کو اپنی سمسیا سنائی. گرو بھی اچھا تھا، سمجھدار تھا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ملہرا دیتا ہوں. بابا مرلی میں کہتا نا، ملہرا مکھ میں ڈالو، کل بھی تھا مرلی میں. تو جب تمہاری سانس بولنا شروع کرے تو تم یہ ملہرا مکھ میں رکھ لینا، اور یہ دھیان دینا کہ یہ مکھ سے گرے نہیں. ملہرا تو کیا، تابیز جیسا اس نے کچھ، ہاں اس کو آمولیٹھی سمجھ لو، آمولیٹھی رکھ لو. تو اس نے آ کے اس نے پرس میں لے لیا گرو سے، چلو بابا کی یاد میں. جب گرو نے اس کو وہ ملہرا دیا، اسے وہ رکھ کر لے آئی، اور سچ مچ جب اس نے گھر میں پرویش کیا تو اسے دیکھتے ہی ساس نے بولنا شروع کر دیا، کہاں گئی تھی، یہ ہوا، اتنی دیر کر دی، آدھی آدھی. اس نے فٹافٹ گرو کی آگیا مانی، پرس کھولا اور وہ جو ملا ہوا تھا ٹکڑا اسے نکالا اور مکھ میں رکھ لیا. اب گرو نے کہا تھا کہ یہ گرے نہیں، اب مکھ کھولے کیسے، کھولے گی تو گر جائے گا، گرو کا کہنا تو ماننا ہی تھا. اب مکھ اس کا رہا بند، اور سانس تو بیچاری بولتی رہی، آخر وہ بھی چپ ہو گئی، کیونکہ ریسپانس ملا ہی نہیں. پرنتو کیا ہوا کہ جو اس نے بولا تھا نا سانس نے، اس کے کان تو کھلے تھے، مکھ تو بند تھا، کان تو کھلے تھے نا، بڑے دھیان سے سنتی رہی. اچھا، میری سانس نے میرے لیے یہ بولا، ارے دماغ اتنا اس کا پریشان، ٹینشن میں آ گیا، باقی بھی اور زیادہ، کیونکہ خود تو بولا نہیں، سنا ہی سنا، وہ بھر گیا اندر سارا. اگلے دن پھر بھاگی گرو کے پاس، گرو جی کو کہا، گرو جی جھگڑا تو نہیں ہوا کل، یہ تو فائدہ ہوا، آپ نے مجھے وہ دیا تھا اور میں نے مکھ میں ڈال کے رکھا، لیکن میں اتنی ٹینشن میں ہوں. گرو جی نے کہا، کیا ہوا پھر جب جھگڑا ہی نہیں ہوا؟ کہا اس نے جو یہ بولا مجھے، اور مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. تو گرو جی نے کہا، اچھا اب اس کا علاج کیا تھا؟ گرو کے پاس تو اور کچھ تھا نہیں ایسا، اس نے دو روئی کی گولیاں بنا کے کہا، یہ بھی رکھ لو، جب وہ بولے تو تم سننا نہیں، کان میں اس کو ڈال لینا. کہا اچھا. آ گئی گھر میں، آئی تو پھر وہی کھیل شروع ہوا، ساس نے بولنا شروع کیا. تو اس نے کیا کیا، مکھ میں تو ڈال لیا ملہرا، اور کان میں ڈال لی وہ دونوں گولیاں روئی کی. اب اس کو سنائی بھی نہیں دے رہا تھا، وہ بولتی جا رہی تھی، تو یہ دیکھ رہی تھی اس کو. اور آپ کو پتا نا، جب آپ کے لیے کچھ کوئی بولے تو چہرہ بتاتا ہے، یہ میرے لیے الٹا سلٹا بول رہی ہے، چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے نا. اچھی بات کوئی بولتا ہے تو بڑے پیار سے آئیے، ہاں بڑے مسکر، اور جب کوئی خراب بات بولتا ہے ایسے ایسے کرتا ہے نا، چہرہ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ اب آپ سب کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے، بڑے یوگ یکت ہو، خوش ہو، راضی ہو، ہاں بتا رہا ہے نا، اوستھا بڑی اچھی ہے، ہاں بتاتا ہے نا. تو وہ پھر بھی بڑی دکھی ہوئی کہ میں نے کچھ بھی غلط کیا نہیں، یہ میرے لیے ہر سمے الٹا ہی بولتی ہیں، फिर उसने जाके गुरु जी को रिपोर्ट की। अब गुरु जी के पास तो उसका हल कोई आगे था ही नहीं। संसारिक दुनिया वालों के पास आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का हल नहीं है। सन्यासी बेचारे गुफाओं में चले जाते हैं, इसलिए हाँ दिखाते हैं ना ऐसे, गुफा में गए, कोई दिखाई ना दे, कोई सुनाई ना दे, और कहते हैं मिट्टी भी उनके ऊपर चढ़ गई और बैठे तपस्या कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ऐसा योगी तपस्वी बनाया है, इतना हम बच्चों को सहज सरल तरीका बताया, बच्चे आपको और किसी गुफा में नहीं जाना, आपको किसी से नाता नहीं तोड़ना, आप सिर्फ अंतर्मुखता की गुफा में जाओ, ये सबसे अच्छी गुफा है कि ना किसी को देखो, ना सुनो, ना बोलो, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, जैसे बोलते हुए भी न्यारे, वो है अंतर्मुखता की गुफा। माना अपना ध्यान अंदर लाओ, अंदर लाओ, एक नामी बनो, एकांतवासी बनो और इकोनॉमी करो, बस। जिसको ये आ गया ना, वो सदा अंतर्मुखी है और अंतर्मुखी सदा सुखी, वो सदा सुखी है और इसीलिए हम बाबा के बच्चे सदा सुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में एक का ही नाम फिट है ना, एक प्यारा बाबा। जो भी बात है, जो भी संबंध सामने है, जैसा भी व्यक्ति सामने है, पराया है, अपना है, तेरा है, मेरा है, काला है, गोरा है, कैसी भी जाति का है, भाषा का है, हमारी बुद्धि में एक बाबा है। आज की मुरली भी क्या थी? यही थी। बच्चे भले सर्व संबंध हैं, सबकी सेवा भी करनी है, दूर तक बैठे की भी करनी है, लेकिन आपको क्या दिखाई दे? आत्मा। और उनको भी आपसे क्या अनुभव हो? आत्मा और परमात्मा बाप का। तो हम एक नामी होकर चलते हैं तो हमारा बुद्धि योग कहीं भटकता नहीं है। भले आप सबसे बात करते हैं, बहुत नजदीक से नजदीक, कितना भी देह का गहरा संबंध है, तो भी आपकी बुद्धि में कौन है? बाबा। दुनिया में कहते खून का रिश्ता है ना, रोना तो आएगा ही, हा? ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन आपका रिश्ता किसके साथ है और वो कौन सा रिश्ता है? अविनाशी। ये खून का रिश्ता तो एक जन्म का है ना, चलो खून है अपना, कितने वर्ष, शरीर छोड़ते ही खून समाप्त, हाँ? लेकिन मेरा बाबा के साथ ये अविनाशी संबंध है। पहले भी मैं बाबा की थी, रहती भी मैं बाबा के पास परम धाम थी, आई भी मैं वहां से आत्मा यहाँ, अब जाऊंगी भी बाबा के साथ वहां परम धाम। तो जितना हम एक नामी होकर चलते हैं और एकांतवासी, माना उस एक के ही अंत में हम सदा रहे, ये नहीं मेरे साथ कोई ना रहे, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं कैसे चल सकती हूँ इन सब के साथ, ये तो बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, ये घर में बहू कैसे आई, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, नौकर कैसा है, बेकार एकदम, बॉस कैसा है, इतना हठीला, क्या क्या हमारी बुद्धि में आता रहता है, ये सब होगा, ये सब होगा। آپ کہو کہ ہوا ادھر سے آئے, ہوا ادھر سے آئے گی, ہے نا. آپ کہو کہ ٹھنڈی آئے, وہ اور گرم آئے گی. یہ سب ہوگا, لیکن میں جتنا اپنے کو ایک کے انت میں لے جاؤں گی وہی میرا ایکانت ہے. جیسے دیکھو آپ کسی چنتن میں کھو جاتے ہیں, کبھی بھی یہ انوبھو سب کو ہوگا, کبھی کسی چنتن میں آپ کھو گئے تو آپ کو اور کسی کی سدھ بدھ رہتی نہیں, رہتی نہیں. کہتے میں اس پارٹی میں گئی تو تھی لیکن وہاں کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ نہیں پتا. بھائی تو کرنے کیا گئی تھی؟ کہتے میں تو اپنے میں کھوئی ہوئی تھی, میری تو اب سب کچھ سامنے ہوا ہے لیکن پھر بھی دھیان نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ اپنے میں کھوئی ہوئی تھی. ہوتا ہے نا ایسے, کئیوں کا تو کاریہ کشیتر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, بےچارے لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں. اب ماں کچن میں لگی رہتی ہے, کہتی مہمان آئے کیا کھایا, آدھا کھایا پورا کھایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا, کہتے ہیں نا ایسے. تو جب ہم کسی بھی بات کی ڈیپنیس میں ہوتے ہیں, آپ آفس ورک میں آپ کو کوئی پروجیکٹ ملا ہوا ہے آپ اس کی ڈیپنیس میں ہو, آفس میں لڑائی بھی ہوئی کسی کی, باس کب چلا گیا پتہ بھی نہیں چلتا, تو ہماری جو اندر کی کنسنٹریشن ہے دھیان ہے وہ کہاں لگا ہوا ہے ڈپینڈ کرتا ہے اس بات کے اوپر. تو اگر ہم اپنے آپ کو اس گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ بابا میرے ساتھ ہے, میں اس کی ایشوریہ سنتان, اس کے ہی ساتھ میرا اوناشی سمبند ہے, تو اس سے ہم سب کے بیچ میں رہتے ہوئے چاہے کتنا بڑا پریوار ہے آپ کا, کتنا بڑا بزنس ہے آپ کا, کتنی بڑی کاروبار ہے, کارے ویوہار ہے, وہ بابا کہتے ہیں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, وہ اور ہی اچھا نبھانا ہے, لیکن آپ کا دھیان ان سب کی طرف نہیں جا رہا, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہ ہے انتر مکتا, کہ میرا دھیان اندر کی اور ہے, باہر نہیں ہے. یہ سنسکار ہو گیا آتما کا. دنیا میں تو دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہو, اس کا ورنن تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارا دن یہی دھیان دیں گے, اس نے کیا پہنا ہے میں بھی ایسے پہنوں, یہ کیا کھاتا ہے میں بھی ایسے کھاؤں, اس کی گاڑی کون سی, اس کا بنگلہ کون سا, اس کا فلانا کیا, اس کا ذرا ذرا چیز, چھوٹی چھوٹی چیز. اور اب تو سب سے زیادہ اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنے والا ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے نا. ٹائم پاس نہیں ہو رہا, ادھر فون لگاؤ ادھر فون لگاؤ یہ کرو. اور وہ ماں بھی بیٹھی, بیٹی کی شادی ہو گئی, اس کو فون کرے گی تیرے گھر میں آج کیا بنا تھا, میرے گھر میں یہ بنا ہے. وہاں ہی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا ہو جاتا ہے, تو وہ بناتی نہیں. دیکھو ایک چھوٹا سا مثال دے رہی ہوں میں, چھوٹا سا اس لیے سنا رہی ہوں کہ یہ ساری باتیں ہماری آتما کی شکتی کو بڑھنے نہیں دیتی, اور ان سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملتا. تو بابا کہتے بچے سادھن یوز کرو لیکن سادھنا کے ساتھ. بابا نے دیکھو ہمیں منع نہیں کی, یہ کتنی کمال کی بات ہے, کوئی بھی سادھن کی منع نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ بابا نے ہمیں پہلے سے ہی سادھنا دے دی, ہم سادھے سدھے ہوئے بن رہے ہیں سادھنا کے دوارا. تو جو سدھاوا ہوتا ہے اس کے آگے یہ باتیں اثر نہیں کرتی, بھلے وہ دیکھے گا سنے گا بولے گا کھائے گا چلے گا, پارٹی میں آپ کو بھی جانا پڑے گا, لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں, کیونکہ وہ تو اپنے آپ میں ہی ایکانت واسی ہے. پہلے دادیاں ہماری کلاس کراتی تھی نا, کہتی تھی پانچ کیلے کھاؤ گی, آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی یہ بات, میں اکیلا, اکیلے جانا, اکیلے آنا, اکیلے باپ کو یاد کرنا, تاکہ ہماری بدھی اس ایک کی اور رہے اور اپنے لکشے کی اور رہے. کرم تو سب کرنا ہے, سیوا تو سب کرنی ہے. تو انتر مختا کے لیے ہمیں ایکانت واسی بننا ہے. माना अकेले नहीं रहना, लेकिन उस एक के साथ, उस एक की गहराई में ही खोए रहना है, उसी डीपनेस में जाना है। तो हमारा ध्यान आंखें खुली हुई भी कहीं नहीं जाएगा, कान खुले हुए भी कहीं डिस्टर्बेंस फील नहीं करेगा। नहीं तो कानों से चलते फिरते कुछ भी सुन लेते हैं ना, कईयों का तो ये भी स्वभाव होते दो क्या बात करें जरा मैं सुनूं, फिर सारा दिन अपना भी दिमाग खराब औरों का भी करेंगे। तुम्हें पता है वो दो ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, कोई फोन पे बात किसी और की हो रही होगी तो ध्यान देंगे मैं भी सुनूं। तो ये जो सुनना देखना बोलना चलता रहता है बाह्यता की तरफ, वो अंतर्मुखी नहीं बनने देता। इस कारण बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुखता की गुफा में डाला है, दूसरी गुफा में नहीं जाना है, कोई कमरा बंद करके नहीं बैठना है, कोई काम धंधा नहीं छोड़ देना है। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है, कछुए का मिसाल दिया है। राजयोग में अष्ट शक्तियों में कछुआ भी दिखाते हैं, तो कछुए की क्या विशेषता होती है तो सब जानते हो अच्छी तरह। कछुए की भी देखो क्वालिटी है, जब कर्म करना है अंग फैला लेता है, और जब कर्म नहीं करना तो अंग समेट लेता है, और जब उसको कोई उस समय छेड़े भी तो भी वो एकदम सिमटा रहता है। हमने खुद बचपन में करके देखा है, हम वो कछुआ देखते थे ना, पत्थर लगाते थे छोटा छोटा कंकर, वो हिलता ही नहीं था, तो शर्त लगाते थे किसके कंकर से ये हिलेगा, वो हिलता ही नहीं था। अब बचपन था ना तब तो, लेकिन अब समझ में आता है कि उसकी ये कितनी बड़ी क्वालिटी है। कोई हमारे पास एक गिफ्ट ले आया, हमने कहा भी क्या है ये, कहते कछुआ है इसमें। मैंने कहा ये किस लिए लायो, कहते ये रखेंगे ना तो शुभ रहता है। मैंने कहा हम तो खुद ही कछुआ है, तुम्हारा ये कांच का कछुआ हम क्या करेंगे ना, है ना राइट। बाबा ने हमें क्यों बनाया ये, ताकि हम कर्मेंद्रियों से जिस समय जो आवश्यकता है बोले भी, देखे भी, सुने भी, और जब आवश्यकता नहीं है तब उनसे कार्य नहीं लेना। आपकी तो कर्मेंद्रियां भी अनमोल हैं, क्योंकि आपने इस मुख द्वारा ईश्वरीय संदेश देना है, आपके नैनों से कितनों को दृष्टि वाइब्रेशन मिलना है ना, साक्षात्कार होना है। तो आपके नैन ऐसे ही थोड़े हैं जो मर्जी देखते रहे, राइट है ना ये बात। तो हमें अपनी कर्मेंद्रियों को उतना ही यूज करना है जितनी आवश्यकता है। ये बाबा ने हम बच्चों को ऐसी कला सिखाई है ताकि हमारा ध्यान सहज अंदर की ओर चला जाए। उसके लिए बाबा कहते बच्चे इकोनॉमी करो, बचत के अवतार बनो। ठीक है, क्या बचत? जो नहीं देखना वो मत देखो, जो नहीं बोलना वो मत बोलो, आपके बोल भी अनमोल हैं। जो नहीं सुनना वो मत सुनो, तो आपके संकल्पों की बचत होगी, आपके टाइम की भी बचत होगी, आपके शब्दों की भी बचत होगी, बल्कि आपके श्वासों की भी बचत होगी। क्योंकि जब मनुष्य ज्यादा सोचता ज्यादा बोलता है तो श्वास भी ज्यादा चलता है, और जब चुप रहता है जितना बोलना उतना बोलता है तो श्वास भी अपनी स्पीड पे ठीक चलता है। तो ये सब आपके लिए संगम युग में खजाने हैं, इन्हें भी हमें वेस्ट नहीं करना है। तो जब हमारा इस प्रकार का ध्यान रहता है, हम इस विधि से चलते हैं, तो हमारी कंसंट्रेशन अंदर की ओर होती है, और अंदर की ओर होने से हम आत्म स्थित होते हैं, और आत्म स्थित होना ही वास्तव में सही मायने में अंतर्मुखता का गुण है। ऐसी आत्मा को इस गुण को लाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सारा हमारा ध्यान कहां चला गया, अंदर की ओर। चाहे आंख खुली भी है, कान खुले भी है, कान तो है भी ऐसे जो आप बंद भी नहीं कर सकते, कान ऐसे है, इसलिए कानों को देखो, सुनने की कितनी आदत है, इतनी आदत है हम ना भी सुनना चाहे तो भी सुन लेते हैं, होता है ना ऐसे। पर बाबा के हम बच्चे इतने भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने अपना ध्यान अंदर रखा हुआ है, हम आत्म स्थित हैं, तो वो सुनी हुई बात हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं करती है। कई फिर कहते दो कान इसलिए मिले, इधर से सुनो इधर से निकालो, लेकिन निकालने का काम ही क्यों करना पड़े जो हम सुने। डॉग एक बार आपके घर में घुस गया, एंट्री ले गया, आपने उसको एंट्री दे दी, अगली बार वो ना आए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपने एंट्री दी है। अगर आप उसी समय एंट्री नहीं दोगे फिर नहीं आएगा, ये हमने अजमाया हुआ अच्छी तरह। अगर ढील छोड़ दी ना, वो नेक्स्ट टाइम जरूर आता है, और उसी समय भगाया आपने फिर थोड़ा डरता है। तो कान भी ऐसे ही है, अगर हम सुन लेते हैं तो दूसरी बात भी सुन लेते हैं, तीसरी भी सुन लेते हैं, मन अंदर आ जाती है, दिमाग तक पहुंच जाती है। तो इसलिए कोई कहते हैं यहां से जब यहां जाती है तो यहां से ट्रेवल करके जाती है, जब यहां ट्रेवल करेगी योग लगेगा, ध्यान बटा, उसको अंतर्मुखता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाहर की बात हमारे मन के अंदर बैठी है, उसको अंतर्मुखता नहीं कहेंगे। तो अंतर्मुखता एक बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, पुरुषार्थ है, भले वर्ड कॉमन भी कई समझ लेते हैं, पर हमने आपको जैसे आरंभ में ही कहा कि अंतर्मुखता से हमारे अंदर स्वतः ही कई गुण आ जाते हैं, क्योंकि जब हमने अपने ध्यान को सब तरफ से हटाया, हम एकांतवासी होते गए, हमने इकोनॉमी करनी शुरू कर दी, हमने उतना ही बोल बोला या उतना ही सुना जितना आवश्यक है, ध्यान फालतू की बातों में नहीं बताया, तो हमारी अंदर की शक्ति बढ़ जाती है। तो उस स्थिति से, ऐसे अंतर्मुखता से आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी बुद्धि स्थिर होने लगती है। और आज के समय में सबसे बड़ी यही समस्या है, मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती, एकाग्र नहीं होती। जब दुकान पे होते हैं तो घर याद आता है, घर में होते हैं तो दुकान याद आती है, स्कूल में बैठते हैं तो खेल याद आता है, खेलने लगते हैं तो टीचर याद आता है, माँ याद आती है, दोस्त याद आते हैं। पर इस अभ्यास से, अटेंशन से कितना सहज बाबा ने हम बच्चों को स्थिर बुद्धि बना दिया, और उससे कई गुण, उनके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एकदम समाने की शक्ति, समाने का गुण आ जाता है, कुछ भी होता है अंदर चला जाता है, बस छुट्टी। हाँ, जैसे सागर होता है ना, तो सागर में कोई भी बड़ी चीज चली जाए नीचे चली जाती है, तो कई गुण आ जाते हैं। और जो आत्मा अंतर्मुखी होती है, आप देखो वो शांत भी होती है, नेचुरल। उस समय उसको कोई उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता कि मैं शांत रहूं, मैं वो है ही अंतर्मुखी ना, बोलेगी दो शब्द ना, ज्यादा बोलेगी नहीं ना, वो तो उसका नेचुरल है ना। तो जब वो खुद ही ज्यादा नहीं बोलेगी तो दूसरा भी ज्यादा क्या बोलेगा, बोलेगा तो सोच के ही बोलेगा ना। तो नेचुरल उसका गुण वो असर कर रहा है, उसके अपने व्यक्तित्व के ऊपर भी और अन्यों के ऊपर भी, और उसका वाइब्रेशन भी फैल रहा है। हमने तो यहां तक देखा है कि उनमें सहनशीलता भी होती है, अंतर्मुखी है ना। तो कोई घटना घटी, कोई बात आई सामने, तो वो चुप कर जाएगा। जो कहावत है ना, एक चुप सौ सुख, उसको चुप रहना कठिन नहीं लगेगा, और उसको ये नहीं लगेगा अरे मैं चुप रह के नुकसान में चली गई, नहीं, कई फिर ऐसे सोच लेते हैं, कहते हैं अरे वो बोली तुझे भी बोलना चाहिए था। कहा नहीं, क्यों? क्योंकि वो अंदर से भरपूर महसूस कर रही है आत्मा, अंदर से उसकी शक्ति बढ़ गई, घटी नहीं, इसलिए उसमें ये गुण भी आ जाता है। और जो आत्मा चुप रहती है, शांत रहती है, उसकी वाणी में शालीनता होती है, नेचुरल नेचुरल शालीनता होती है। और सबसे बड़ी बात, उसे गलतियां ही कम होती हैं। आप टोटल देख लो, जितना जो ज्यादा बोलता होगा उतनी उससे गलतियां भी होती होंगी, नेचुरल। आप कोई भी काम एक्सेस में ले जाओ तो मैनेजमेंट में कोई भी काम, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज, आप स्थूल चीज भी एक्सेस में ले जाओ तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है ना। ध्यान बटता है, बार बार ध्यान बटता है, तो हम जब ज्यादा बोलते हैं हमारा ध्यान बाहर बटता है, हम ज्यादा सुनते हैं हमारा ध्यान बाहर बटता है, हम कोई भी चीज ज्यादा रखते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें एकांतवासी के साथ इकोनॉमी करने को क्यों कहा, इसीलिए कहा। अगर हम इकोनॉमी नहीं करेंगे तो हम एकांतवासी बनने में भी हमें मुश्किल हो सकती है। एक माता थी, संपर्क में थी, रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी, बहन थी, उसकी सांस रेगुलर थोड़ा थी, तो वो बहू को अचानक, मिडल एज थी बहू भी, अचानक ऐसी बीमारी आई कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। थी अच्छी भली थी, बिल्कुल ठीक, बड़ी रॉयल फैमिली से, काफी धनवान परिवार था। तो उसकी सांस हमारे पास आई, उसने सारी बात सुनाई, कहा दीदी एक बार आप दृष्टि देने चलो क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसे होगा। हमने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं क्यों कह रही हूं आपको चलो, क्योंकि ये जो उसकी बहू थी, कहा इसका जो बुद्धि योग है ना इस समय बाबा में नहीं लग रहा। हमने कहा क्या कारण है, उसको तो ज्ञान है थोड़ा। तो कहती है कि इसको ना शुरू से शौक रहा है, ये जहां भी जाती थी वहां से नए डिजाइन की साड़ी जरूर लेके आती थी, और इतनी साड़ियां हैं कि उसमें से आधी इसने अभी पहनी भी नहीं है, वो अलमारी में न्यू ब्रांड रखी हुई है। और जब से इसको ये पता चला है कि डॉक्टर्स, हाँ पता तो पेशेंट को चल ही जाता है, कहा मुझे बार बार पूछती है उन साड़ियों का क्या होगा। ये सच्ची बात सुना रही हूं मैं आपको, रियल घटना। का बार बार मेरे से एक ही बात पूछ, क्योंकि अपने शौक से खर्चा करके महंगी महंगी साड़ियां उसने लाई, शौक होता है ना, क्रेज होता है, किसी को साड़ी का नहीं तो चप्पल का भी होता है, हैं? 50 जोड़ी लाइन लगी रहती है, हरे के साथ हरी, नीली के साथ नीली, एक मिसाल है। आप तो योगी बच्चे हो, बाबा के समझदार हो। उसने कहा दीदी एक ही थॉट वो मुझे पूछती है उन साड़ियों का क्या होगा, कौन पहनेगा उसको। देखो, क्योंकि वो अपने लिए लाई थी और खर्चा करके लाई थी, नए नए डिजाइन की। कहा अब मैं कैसे, इसका बुद्धि योग भटक गया है, बाबा में लगे ना वो ये चाहती थी, बस यही एक रीजन था। तो मैं ये मन में सोचती हूं कई बार, अंतर्मुखता हमें ऐसी अवस्था डिटैचमेंट की बनाने में बहुत मदद करता है। बाबा ने भले हमें पहनने की छुट्टी दिया, हमें तो चलो सफेद वस्त्रधारी बना दिया, बात साड़ी की नहीं है, कोई भी चीज हो, कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, एनीथिंग, हमारा बुद्धि योग भटके नहीं। ये हम पहले से ही अपने आप को, ध्यान को, संकल्पों को अंदर की ओर रखेंगे, बाह्यता में नहीं ले जाएंगे, तो हम उस अनुभूति तक पहुंच पाएंगे कि अब मुझे बिल्कुल इस बात से न्यारा हो जाना है। कई बार देखो हम अपने आप को कहते हैं इस बात में नहीं जाना, या फलां व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, मुझे उसकी याद नहीं आनी चाहिए। अपने आप को नॉलेज है, हम अपने आप को समझाते हैं फिर याद खींचती है। ये नहीं हो, हम अशरीरीपन की अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं, बेहद की वैराग वृत्ति का अनुभव करना चाहते हैं, अंतरात्मा उसकी प्यास में है, तो पहले से ही हम अपने आप को ऐसा बनाएं। भले वो बात आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर मैं अंतर्मुखी होंगी तो मैं अपने ध्यान को उस बाह्य रूप से, उस बाह्य वस्तु या व्यक्ति से हटा पाऊंगी, उस स्थान से जहां से मैं चाहती हूं मेरा मन ना जाए हटा पाऊंगी। कहीं पर भी वो, हर एक का रोल अपने संस्कारों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे को सहज वो गुण और शक्तियां आ जाती है, हम जिस अवस्था को पाना चाहते हैं उसमें हमें धरती जैसे बनी हुई हो, हाँ प्लेन जैसे अपने उस पर खड़ा हो तो उड़ना, अगर उसे रास्ता ही ना मिल रहा हो तो उड़ेगा कब। आजकल इसलिए देखा ना, कई बार फ्लाइट्स इतनी होती हैं वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, हाँ। तो हमें फिर ये मेहनत नहीं करनी पड़े कि हमारी बुद्धि चलती रहे उस अवस्था को बनाने के लिए। नहीं, आपका तो पहले ही एरोप्लेन सेट है, माइंड सेट है, कहीं आपका ध्यान जा नहीं रहा, हाँ? आपने पहले से अभ्यास किया हुआ अंतर्मुखता का। तो ऐसी आत्मा को डीप साइलेंस में रहना इजी होता है, आवाज से परे जाना इजी होता है। जो बाबा हमें कहते हैं ना, सेकंड में एक ही संकल्प में आवाज से परे चले जाओ, फिर दूसरे संकल्प में भले आवाज में भी आ जाओ, सेवा करनी है तो आप डिटैच होके कैसे अपनी वाणी के द्वारा सेवा भी कर सकते हो, या कोई भी कर्म द्वारा सेवा भी कर सकते हो। तो वो अवस्था हमें बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अंतर्मुखता का गुण ऐसा है जो हमारी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करता है, अनेक गुणों को भी लाने में मदद करता है, और कोई भी अवस्था बनाने में उस समय हमें ये नहीं लगता कि मेरी अवस्था ये बन नहीं सकेगी, या ये मुश्किल है, या उसमें मेहनत महसूस हो, टाइम लग जाए। अभी ऐसा टाइम भी नहीं रहा, कौन सी घटना किस सेकंड मिनट हमारे सामने आ जाए और मैं पंछी उड़ना चाहूं बाबा के पास तो मेरी कंसंट्रेशन सहज बन जाए कोई भी बात में। तो ऐसे हम अपना पहले से ही प्लेटफॉर्म अंतर्मुखता का बना के रखेंगे तो ध्यान हमारा सहज आत्म स्थिति और परमात्म प्यार में खो जाएगा। ओम शांति।
चारों तरफ से अपनी बुद्धि को समेटना, ये है अंतर्मुखता। कितनी सरल भाषा में अंतर्मुखी अवस्था का हम सभी के सामने चित्र स्पष्ट किया। हम सभी आदरणीय पुष्पा दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस 3 दिन की तपस्या में हम अपनी वह अवस्था अवश्य बनाएंगे, ठीक है ना? दीदी कहते हैं, अरे पुष्पा दीदी कहते हैं हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी अंतर्मुखी अवस्था का सुख लेंगे।